نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خواتین و حضرات. ایک شخص نے ایک طوطا پال رکھا تھا اور بہت محنت سے اسے بولنا سکھایا اور وہ طوطا بھی خوب وفادار نکلا کہ مالک کی غیر موجودگی میں وہ گھر کی حفاظت کرتا تھا اور جب مالک ہوتا تھا تو اس کی جو دکان گھر ہی میں تھی اس دکان میں آنے والے کسٹمرز کو گائیڈ کرتا رہتا تھا. ایک روز مالک اسے اپنی دکان میں چھوڑ کر چلا گیا اور جاتا ہوا طوطے سے کہہ گیا کہ میں باہر جا رہا ہوں تو دکان کی حفاظت کرنا, اس کا خیال رکھنا. تھوڑی دیر کے بعد دکان میں ایک چوہا داخل ہوا اور اس چوہے کی تعاقب میں ایک بلی آ گئی. تو چوہے نے جب بلی کو دیکھا تو سامان کے پیچھے بھاگا. بلی نے اس پر جست لگائی پکڑنے کے لیے. اس کے نتیجے میں جو وہاں کچھ روغن پڑے تھے, لوشنز پڑے تھے, وہ بلی کے ٹکرانے سے گر گئے اور خود یہ طوطا خوفزدہ ہو گیا. اپنی جان بچانے کے لیے جو اس نے اڑان بھری تو اس پروسیس میں دو تین مرتبہ گر گئے, جس کا طوطے کو بہت افسوس تھا اور اس دکھ کی وجہ سے طوطے نے بولنا بند کر دیا. مالک پریشان تھا کہ طوطا اب بولتا نہیں. مختلف فقیروں کے پاس, درویشوں کے پاس گئے کہ دعا کریں کہ میرا طوطا دوبارہ بولنے لگے, لیکن طوطا بول کر نہیں دیا. سارا دن خاموش دکان میں اپنی جگہ پر طوطا بیٹھا رہتا تھا. تمام کوششیں ناکام ہو گئیں کہ وہ بول دے, بولا نہیں. لیکن ایک دن اتفاق یہ ہے کہ وہاں سے ایک ایسا شخص گزرا جس کے سر پر بالکل کوئی بال نہیں تھی. تو طوطا بھی اصل میں گنجا ہو گیا ہوا تھا وہ بلی کے خوف سے اڑنے سے. تو طوطے نے دیکھا کہ اسی کی طرح ایک گنجا انسان جا رہا ہے تو ایک دم بول اٹھا کہ بھائی کیا تم سے بھی دو تین مرتبان گر کے ٹوٹ گئے تھے جو تم گنجے ہو گئے. بات یہ ہے کہ ہم اپنے اور دوسروں کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ میری ہی طرح کا انسان ہے, جبکہ ہمارے اعمال ان کا انحصار ہماری نیتوں پر ہے. جس طرح سے دو ہرن جو بظاہر ایک سے ہیں وہ ایک ہی طرح کی گھاس کھاتے ہیں, لیکن ایک ہرن اس گھاس کو کھاتا ہے اور جو جو چیز اس سے اس کا جزو بدن بن سکتی ہے وہ بن جاتی ہے اور باقی گھاس فضلے کی صورت میں خارج ہو جاتا ہے. ویسا ہی دکھائی دینے والا ایک ہرن اسی گھاس کو کھاتا ہے تو اس کے جسم میں کستوری بنتی ہے. گرچہ ہمارے اعمال سب کے ایک سے دکھائی دیتے ہیں, عبادات ہماری ایک سے دکھائی دیں, یہ احتمال ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ایک ولی اللہ نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, اللہ کو پکارتا ہے تو مجھ جیسا گنہگار شخص بھی اگر نماز پڑھ رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے اور رب کو پکارتا ہے تو دونوں کی پکار ایک سی ہے. بہت فرق ہے. بظاہر تو وہ ولی اللہ بھی اور مجھ جیسا گنہگار بھی ایک ہی طرح کے انسان ہم دکھائی دیتے ہیں, لیکن در حقیقت نیتوں کا بہت فرق ہے. میری نیت میں فطور ہے, میرے تمام اعمال, میری تمام ریاضت, میری تمام عبادت ریاکاری ہے. وہ اس لیے ہے کہ لوگ دیکھ کے مجھے نیک سمجھیں, مجھے نیک کہیں, مجھے جھک کے سلام کریں, اس سے میرا نفس پھلتا پھولتا ہے. جبکہ فقیر صرف اور صرف اپنے رب کو پکارتا ہے, اس میں تو یہ بھی غرض نہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, وہ تو یہ بھی توقع نہیں رکھتا, یہ بھی صلاح نہیں مانگتا رب سے, وہ تو صرف رب کو پکارتا ہے کہ رب میرا ہے, मैं इसे पुकारूं। तो जाहिरी एमाल पर कभी गुमान हम ये ना करें कि मैं भी इसी नेक इंसान की तरह नमाज पढ़ता हूं, ऐसा ही हूं। नियतों के फर्क पड़ जाए, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एमाल का ताल्लुक नियतों से है, उसकी बुनियाद यही एक बात है। मैं अक्सर बेशतर एक अर्ज किया करता हूं आपकी खिदमत में, गरचे खुद इस पर कभी अमल नहीं किया, मुझे ये तस्लीम करने में, ये कन्फेशन करने में कोई यार नहीं है, लेकिन कम से कम खुद अमल न करूं दूसरों को तो कह के आपकी नजर में कोई अच्छा इंसान ठहर सकता हूं। इबादात को हम सिले की तोक्को से खाली कर दें, हमारी इबादात जो है उसमें कहीं ये डर न हो कि मैं जहन्नुम में चला जाऊंगा इसलिए मैं इबादत करूं ताकि जहन्नुम में न जाऊं, उसमें कहीं जन्नत का लालच न आ जाए कि मैं इबादत करूंगा तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा, उसमें यह भी खौफ ना हो कि मेरे रब का हुक्म है कि मेरी इबादत करूं तो मैं उस हुक्म की ताबेदारी करूं, उसकी इबादत करूं ताकि कल को मुझे सजा ना मिले, उसमें यह भी ना हो कि रब मुझसे राजी हो जाएगा मैं उसकी इबादत करूं। उस इबादत के पीछे अगर सिर्फ एक जज्बा हो कि मेरा रब इतना मेहरबान है कि वो बगैर मांगे मुझे अता करता है, मेरा रब इतना मेहरबान है कि उसने मुझे मुकम्मल शक्ल में पैदा किया, मेरा कोई उज्व भी तो जाया हो सकता था, मेरा रब इतना अजीम है कि मैं सुबह से शाम तक उसकी सरकशी करता हूं, उसकी कोई बात नहीं मानता, लेकिन वो इतना जर्फ वाला है कि उसने कभी मुझ पर गिरफ्त नहीं की है। मुझसे अभी कोई आदमी अगर सिर्फ 2 रुपए मांग ले तो मेरा पहला सवाल उससे ये होगा कि क्यों, तुम्हें कहां चाहिए, और वो मुझे कहे कि मैं भूखा हूं तो मैं पलट के जवाब दूंगा तुम भूखे नहीं हो, तुमने इसे नशा करना है, लेकिन मेरा रब इतना अजीम है कि उसने आज तक मुझसे कभी नहीं पूछा कि जो रिस्क मैं तुम्हें मांगने पर और बिन मांगे दोनों तरह का अता करता हूं तुमने उसे किस किस गलत जगह पर खर्च किया। मैं रब ही के अता किए हुए रिस्क से शराब भी रोज पीता हूं, जुआ खेलता हूं, खवातीन के पीछे भागता हूं, लोगों के खिलाफ साजिशें करता हूं उसी रिस्क से, लेकिन रब ने कभी गिरफ्त नहीं की, कभी देते हुए मुझसे ये नहीं कहा कि तुम पहले रिस्क का तो यह हाल किया तुमने, आइंदा क्या करोगे, वो इतना अजीम है। तो जो रब इतना अजीम है तो वो डिजर्व करता है कि उसकी इबादत की जाए। तो अगर कहीं मेरी इबादत में ये रंग आ जाए कि मैं रब ताला की इबादत सिर्फ इसलिए करूं कि ये वो डिजर्व करता है, वो इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए, और उस इबादत के जवाब में वो मेरे साथ क्या सलूक करता है इससे मुझे गर्ज नहीं, इसलिए कि वो आका है, वो मालिक है, जो चाहे वो सलूक करे ये उसका हक है। ये रियाकारी और ये दिखावा, गर्ज, लालच अगर हमारी इबादत से निकल गई तो फिर उस इबादत का कभी जिक्र हमारी जुबान पर नहीं आएगा कि मैं ये इबादत भी करता हूं, क्योंकि जब इंसान किसी का कोई हक अदा कर रहा होता है तो उस हक की अदायगी को जताता नहीं कि मैंने तुम्हारा हक ये अदा किया, बल्कि शुक्रगुजारी होती है, आदमी शुक्र अदा करता है कि मैं किसी का हक अदा कर सका। तो वहां इबादत के बाद बजाय इसके कि तकब्बुर क्या एहसास पैदा हो, वहां शुक्रगुजारी और आजजी का पहलू पैदा होने लगता है, और इंसान अपनी इबादत को खुद अपनी जात से छुपाता है कि मेरी अपनी जात को यह पता न लगे कि मैं इबादत कर रहा हूं। ख्वातीनों हजरात, हम सब, मैं भी और मुझ जैसे और सयाकार लोग अपने अंदर मुख्तलिफ बुत पाले हुए हैं, हम में से कोई अपने इल्म के बुत की पूजा कर रहा है, उसके अंदर ये तकब्बुर है कि मुझे अल्लाह ने बहुत इल्म अता किया है। कोई शख्स अपनी अना का बुत पाले हुए है, उसकी पूजा करता है, कोई शख्स मुझे आंख उठाकर देख कैसे ले। किसी शख्स को अपनी दौलत का तकब्बुर है, वो उस तकब्बुर का बुत पाले हुए है अपने अंदर। मैंने सेमिनार में भी ये अर्ज की थी कि मेरे नजदीक तकब्बुर की बदतरीन शक्ल आजजी का तकब्बुर है, कि हम में से बहुत से लोगों में आजजी का तकब्बुर है, और वही तकब्बुर हमें किसी की तनकीद को बर्दाश्त नहीं करने देता। कोई शख्स मुझ पर उंगली उठाए, मैं गवारा नहीं करता, लेकिन जब मैं किसी से मिलता हूं तो बहुत झुक के मिलूंगा, आप और जनाब से कम बात नहीं करता। लेकिन जहां किसी ने मुझ पर उंगली उठाई और मैं आपे से बाहर हुआ, यह आजजी का तकब्बुर है जो वो रवैये रखवाता है। अगर हमने इबादत उस अंदाज में कर ली जिस अंदाज में मैं अर्ज कर रहा हूं, तो एक एक करके ये बुत हमारे अंदर टूटना शुरू हो जाते हैं, और एक वक्त आता है कि फिर मोमिन की सी आजजी इंसान में पैदा होती है, जो हकीकी आजजी होती है, और वही आजजी रब को पसंद है। जाहरी आजजी रब को पसंद नहीं आएगी, कि इसके पीछे तकब्बुर है। लास्ट संडे बहुत से सवालात लोगों के रह गए थे, ये किसी साहब ने सवाल पूछा है कि दिल में रब की मोहब्बत की फीलिंग और लेवल ऑफ मोटिवेशन, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, मोटिवेशन टुवर्ड्स अल्लाह का लेवल क्या परमानेंट नहीं हो सकता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत दुआ से मुतालिक बात फरमाई थी कि खिलाफ फितरत दुआएं कबूल नहीं होती। हमारी फ्रस्ट्रेशन का एक सबब यह है कि हम दुआ को गलत समझते हैं। जिस तरह सिपाही का मेन वेपन उसकी राइफल है और तोपखाने का फायर सपोर्टिंग फायर है उसका, जहां वो बहुत मुश्किल में फंस जाए कि दुश्मन का दबाव बहुत ज्यादा हो जाए, वहां वो तोपखाने की गोलाबारी करवा के उस प्रेशर को सॉफन करते हैं। बिल्कुल इसी तरह मेन वेपन हमारा एफर्ट है और दुआ सपोर्टिंग वेपन है, कि जब हम पूरी एफर्ट कर लें पूरी दयानतदारी के साथ, नेकनीयती के साथ, तो फिर उसके बाद हम अल्लाह के हुजूर दुआ करें कि या बारी ताला, मैं जो कुछ कर सकता था तूने जो मुझे जिस्मानी और जहनी सलाहियतें अता फरमाई हैं उनसे पूरी तरह काम लेके मैंने एफर्ट कर ली, तो मुझे इसमें कामयाबी अता फरमा दे। लेकिन हम दुआ को गलत समझते हैं। हमारा ख्याल ये है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर, मैंने यहां किसी नशिस्त में यह अर्ज किया था कि रब ताला ने हर चीज के जोड़े पैदा किए हैं, सूरह यासीन में भी है, ये सुख के साथ दुख पैदा किया है, खुशहाली के साथ तंगदस्ती है, तंदुरुस्ती के साथ बीमारी है, इज्जत के साथ जिल्लत है, राहत के साथ तकलीफ है। ये कर्ज के तमाम चीजें जोड़े की सूरत में हैं। हमारी अपनी जिंदगी रकम है दुख और सुख से। इसकी जहां स्ट्रेंथ्स हैं वहीं डाउनसाइड भी है उसकी। मैंने एक बार शायद ये किस्सा सुनाया था कि मैं जिन बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ करता था, वहां एक साहब तशरीफ लाते रहते थे पहले भी, तो वो साहब तशरीफ लाए और उन्होंने उन बुजुर्ग की खिदमत में अर्ज किया कि आजकल मैं बहुत मुसीबत में हूं। तो मैंने देखा कि उन बुजुर्ग के चेहरे पर कुछ नागवारी के आसार पैदा हुए, तो मैंने उन साहब को इशारा किया कि मत बोलो, लेकिन उन्होंने दोबारा भी कह दिया तो और ज्यादा तरद्दुद के आसार पैदा हुए। मैंने फिर इशारा किया कि मत कहिए, लेकिन उन साहब ने जब तीसरी बार कहा तो इन बुजुर्ग ने उन्हें एक बात कही जो मेरे लिए तो बड़ी सबक आमोज थी और शायद उस दिन के बाद से ये ख्याल ही दिल से निकल गया। उन्होंने फरमाया कि क्यों मियां, अच्छे दिन गुजारने के लिए तुम थे और बुरे दिन तुम्हारी जगह कोई और गुजारेगा, वो क्यों? वो फिक्रा उन साहब के लिए कहा गया, लेकिन उस दिन के बाद से दिल से ये निकल ही गया कि क्या राहत और क्या दुख, क्या खुशहाली और क्या तंगदस्ती, क्या इज्जत और क्या जिल्लत, तमाम चीजें उस फिक्रे के कहने पर और उस पर गौर करने के बाद निकल गई कि मेरी जिंदगी का नेचुरल फॉर्मेशन जो है वो इन्हीं अपोजिट चीजों के साथ रकम है। तो अगर अच्छा वक्त मैंने देखा है तो बुरा वक्त भी मुझे ही गुजारना है। तो जिस खुशी के साथ मैंने अच्छा वक्त गुजारा, उसी स्माइलिंग फेस के साथ मैं दुख के दिन गुजार लूं और उफ ना आए मेरी जुबान पर। ये उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है हमारे। हमारी बॉडी केमिस्ट्री कंसिस्टेंट नहीं रहती, माहौल का असर, दूसरे प्लेनेट का असर, मौसम का असर, ये सब हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होते रहते हैं और वो असरात हमारे मूड को चेंज करते रहते हैं, वो हमारे लेवल ऑफ मोटिवेशन को इफेक्ट कर देते हैं। जब तक हम उस मकाम पर नहीं पहुंचते कि जहां हर किस्म के हालात जो रब की तरफ से हमें अता किए जा रहे हैं उनको हम बड़ी खुशी से कबूल कर लें, तो ये मोटिवेशन के अंदर उतार चढ़ाव आता रहता है। तो अगर हम ये चाहें कि हम हमारे यहां लेवल ऑफ मोटिवेशन चेंज ना हो, तो उसके लिए जरूरी यह है कि हम अपने आप को ये यकीन दिला दें कि रब बड़ा मेहरबान है, उसकी तरफ से आने वाली मुसीबत भी हमारे फायदे में है। तो उसकी तरफ से आने वाले इनामात को हमने अगर हंसते हुए चेहरे के साथ रिसीव किया है और उसे एंजॉय किया है, तो अगर बुरा वक्त आ गया तो हम इसे भी उसी हंसते हुए चेहरे से कबूल कर लें, तो फिर लेवल ऑफ मोटिवेशन उसके अंदर वेरिएशन नहीं आएगी आपकी। तो उसके लिए अगर हम लेवल ऑफ मोटिवेशन को कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं तो पहले हमें उसके लिए एफर्ट करना होगी। तो उस मकाम पर जाएंगे तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा सब। अगला किसी ने सवाल पूछा कि मायूसी कुफ्र है या गुनाह? बाज़ोकात इंसान की ना पूरी होने वाली ख्वाहिशात, दुआएं, हाजात इंसान को मायूस कर देती हैं। मायूसी एक सोच है या कैफियत का नाम है? इंसान मायूसी से किस तरह निकल सकता है, कोई हल बता दें। मायूसी कुफ्र है, अल्लाह की रहमत से मायूस होना कुफ्र में आएगा। ये मायूसी घर ही उस वक्त करती है जो आपने खुद इसमें मेंशन कर दिया है, आपके सवाल का जवाब आपके सवाल ही में है कि जब इंसान हालात को और दुनिया को, दूसरों को, सबको अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाने की कोशिश करता है कि दूसरे सब लोग उस तरह बिहेव करें जो मुझे सूट करता है, जो मेरे ख्वाहिशात की तकमील कर दे, जब हम हालात से ये तवक्को रखें कि हमेशा हालात वो पैदा होंगे जो मेरी ख्वाहिशात की तकमील कर दें, ये चूंकि हो नहीं सकता, ये अननेचुरल है, तो मायूसी आती है। ये कायनात दर हकीकत एक जिक्सा पजल की तरह है, इसमें इन्यूमरेबल बेशुमार पीसीज हैं, हर पीस का अपना एक मखसूस मकाम है। अगर उस जिक्सा पजल के पीसेस से हमने तस्वीर मुकम्मल करनी है तो फिर छोटे से छोटा हिस्सा और बड़े से बड़ा हिस्सा अपने मकाम पर जाना चाहिए, एक दूसरे के साथ मरबूत हो जाए तो वो तस्वीर मुकम्मल हो जाएगी या वो शक्ल मुकम्मल हो जाएगी। तो ये कायनात रब ताला का जिक्सा पजल है और रब ताला उन पीसेस को अपनी अपनी जगह रखता है ताकि ये कायनात अपनी असल शक्ल में बाकी रहे। जब हम बहसियत एक पीस के दूसरे पीस की जगह लेने की कोशिश करते हैं तो फिर खराबी पैदा होती है, नाकामियां आती हैं और उससे मायूसी डर आती है। इसीलिए जो मतवक्कल लोग हैं, मैंने आपसे अर्ज की थी कि तवक्कल की तीन घाटियां हैं और आखिरी जो घाटी है वो तफवीज की है। और ये वो मकाम है जहां इंसान के तमाम इरादे, तमाम ख्वाहिशात और सोच अल्लाह के इरादों के मातहत हो जाती है। और ये मकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुआ था। तो इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो तवक्कल में जितना आगे जा सके और अपने ख्वाहिशात, अपने इरादे, अपने काम, उन सब को अल्लाह के इरादों के मातहत कर सके तो मायूसी से दूर हो जाएगा कि जो कुछ रब की तरफ से आया उसको हंस के कबूल कर लिया, तो मायूसी नहीं आती। ये किसी साहब ने सवाल पूछा है कि मैं एक तालिबे इल्म हूं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीजें काउंट करेंगी। आज तालिबे इल्म हजरात डिग्रीज तो हासिल कर लेते हैं लेकिन उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पर्सनालिटी ग्रूमिंग नहीं हो पाती, एक गैप सा आ जाता है इसके बारे में। ये एक लंबा सब्जेक्ट है जिस पर कई घंटे लगेंगे बात करते हुए, इसकी अगर डिटेल्स में मैं जाऊंगा तो मुख्तसरन मैं अर्ज कर देता हूं। यहां अक्सर साहिबान वो बैठे हैं जो बाप बन गए हुए हैं, उनके काम आ जाएगी। हम लोग अपनी औलाद पर हर वक्त एक जोर देते रहते हैं कि टेक्स्ट बुक पढ़ो, टेक्स्ट बुक पढ़ो, और उसका नतीजा ये होता है कि हमारे बच्चे जो हैं उनकी एक टनल विजन बनती है, वो सिर्फ एक खास डायरेक्शन में देख पाते हैं और वही टनल विजन उनकी जिंदगी में कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट साबित होती है। इंसान की पर्सनालिटी का जो सबसे कारामद हिस्सा है वो टीम स्पिरिट है, और टीम स्पिरिट के साथ साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये बहुत जरूरी है। वो हमारे बच्चों में नहीं पैदा हो पाती क्योंकि हम उन्हें खेलने की इजाजत ही नहीं देते कि पढ़ो। वो एक चीज पर जोर होता है कि टेक्स्ट बुक्स पढ़ो। इंसान मताले से सीखता है लेकिन हम अपने बच्चों को मताले से डिप्राइव कर देते हैं ये कह कह के टेक्स्ट बुक्स पर जोर दो। जब तक कि इंसान का वियन ब्रॉड नहीं होता, उसका मेंटल होराइजन ब्रॉड नहीं होता, वो इस लायक होता ही नहीं कि अपनी जिंदगी में कामयाबी से कोई कदम उठा सके। इसीलिए अमेरिका, जिसको हम ये कहते हैं, एक जमाना था कि यूके एजुकेशन में बहुत आगे था, लेकिन इस वक्त एक अंदाजा यह है कि अमेरिका यूके से एजुकेशन में 50 इयर्स आगे चला गया है। वहां जो तालीम का तरीका है वो ऐसा है कि उसमें वो इंसान को अंदर से डेवलप करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। वहां जो टेस्ट है वो इंसान की एबिलिटी का टेस्ट है, उसकी मेमोरी का टेस्ट नहीं है। पाकिस्तान में हम मेमोरी का टेस्ट लेते हैं। वहां जो तरीका मैंने देखा है, मुझे इत्तेफाक हुआ कुछ कोर्सेज अटेंड करने का अमेरिका में और फिर दो चार यूनिवर्सिटीज में एज विजिटिंग फैकल्टी लेक्चर देने का भी इत्तेफाक हुआ मुझे, तो जो कुछ मैंने वहां सीखा वो ये था कि उनके यहां केस स्टडी बेस एजुकेशन है। टीचर सिर्फ थ्योरी पढ़ा देता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे दूं कि वो आपको सिर्फ ये पढ़ा देगा कि व्हाट इज प्राइस थ्योरी। अब वो प्राइस थ्योरी पर आपको उसकी डेफिनेशन बता देगा, उसको एक्सप्लेन कर देगा कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस मैन्युफैक्चरर नहीं मुकर्रर करता बल्कि ये मार्केट है जो प्राइस को डिटरमिन करेगी। अब वो इसको डिफाइन करेगा और इसको आगे एक्सप्लेन कर देगा। करने के बाद वो अपनी पूरी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उसके ग्रुप्स बना देगा, जिसे हम ग्रुप स्टडी कहते हैं, और हर ग्रुप में एक ग्रुप लीडर स्टूडेंट ही होगा और वो मुख्तलिफ अदारों की केस पकड़ा देगा. फॉर एग्जाम्पल ऐसी है, आपको मैं कह रहा हूं कि जनरल मोटर्स की, जनरल मोटर्स थंडरबर्ड के नाम से एक कार लाई है, अब उसकी उसे प्राइसिंग करना है, तो ये प्राइसिंग आप कीजिए. लेवर ब्रदर्स नया शैम्पू लेकर आया है, इसकी प्राइसिंग आप कीजिए, मार्केट में किस तरह किस प्राइस पर बेचेंगे. अब अगर क्लास के अंदर फर्ज कर लीजिए 45 स्टूडेंट्स हैं, तो वो 1+10 का ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप लीडर और 10 उसके मेंबर्स, और उनको वो चार ग्रुप बन गए, चारों को एक केस स्टडी दे दिया, उन्होंने उस पर पेपर लिखे, वो आपस में डिस्कशन करते हैं, हर आदमी अपने व्यूज बयान करता है, फिर उससे पेपर डेवलप होता है जिसे वो खुद डिस्कस करेंगे आपस में, और डिस्कस करके तो फिर वो फाइनल हो जाएगा पेपर, वो सबमिट कर देंगे प्रोफेसर को. ग्रुप लीडर को वो बुलाएगा कि आके एक्सप्लेन करो इसको, तो चारों ग्रुप लीडर्स अपने अपने पेपर को एक्सप्लेन करके डिफेंड भी करेंगे, क्योंकि बाकी पूरी क्लास इतराज कर रही है, खुद प्रोफेसर भी कर रहा है, तो वो डिफेंड कराएगा. अब उससे ये है कि उनका जो कुछ वो सीख रहे हैं उसकी एप्लीकेशन और उनकी माइंड एप्लीकेशन वो उसमें आ जाएगी. फिर क्योंकि आपस में डिस्कशन करते हैं तो एक दूसरे को टॉलरेट करने का जज्बा पैदा हो जाता है, एक दूसरे को सपोर्ट करने का, एक कॉमन कॉज के लिए काम करने का, एक कॉमन गोल के लिए काम करने का जज्बा पैदा होता है. हमारी पर्सनैलिटी के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है. तो ये मैंने मुख्तसरन बता दिया कि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग जो है वो किस तरह से की जाती है, ये उसका सिर्फ एक छोटा सा एस्पेक्ट मैंने अर्ज किया आपसे. ये 6-7 घंटे लग जाएंगे इस पर मुझे डिस्कस करते हुए, या तो किसी सेमिनार में, जब कभी आइंदा सेमिनार हो उसमें टॉपिक ये रख लीजिए, तो उसमें मैं 5-6 घंटे बोल दूंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या फैक्टर्स हैं और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग को किस तरह से हम कर सकते हैं. लेकिन पर्सनैलिटी ग्रूमिंग सिर्फ उसी सूरत में आएगी जब घर के अंदर और स्कूल में हमें ऐसा माहौल प्रोवाइड कर दिया जाए, हम अपने बच्चों को ऐसा माहौल प्रोवाइड कर दें जिसके अंदर वो मुताले पर जोर दें, टेक्स्ट बुक पढ़ने पर नहीं. टेक्स्ट बुक तो बेशक ना पढ़िए. अमेरिका के अंदर जिस जमाने में मैं कार्डिफ से MBA कर रहा था, तो कहा ही जाता था कि अगर एक आदमी रोजाना 3-4 घंटे लाइब्रेरी में नहीं गुजारता तो वो कभी MBA नहीं कर सकता. अमेरिका में आज भी अगर कोई शख्स MBA करना चाहता है तो उसको लाइब्रेरी में 8-10 घंटे गुजारना है डेली बिला नागा, कि वो टेक्स्ट बुक तो पढ़ता ही नहीं कोई उस सब्जेक्ट से मुतालिक, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, पेपर्स, वो सब स्टडी करता रहता है बंदा. नतीजा ये है कि टेक्स्ट बुक्स उसे कतन नहीं आती, कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो सब्जेक्ट को इतनी अच्छी तरह से समझता है. हम अपने सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं करते, हम मेमोराइज किए हुए होते हैं. नतीजा यह है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम जाते हैं तो हम उसे अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि हमें अप्लाई करना नहीं आता. नतीजा यह है कि जॉब में हम फेलियर होते हैं. इंटरव्यू में आप जाते हैं, अगर मुझे बहुत सीनियर आदमी जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर मुझे अपॉइंट करना है अपने लिए, तो एक अजीबोगरीब मेथड यूज होता है. ये पर्सनालिटी ग्रूमिंग ही का हिस्सा मैं आपसे अर्ज कर दूं कि वो जो नीचे इंटरव्यू बोर्ड मैंने बनाया हुआ है, वो तो इंटरव्यू करके मुझे 2 कैंडिडेट रेफर कर देगा कि ये क्वालिफाई करते हैं. अब मैं उन दोनों को बारी बारी बुला के कभी ये बात नहीं करूंगा कि आपने क्या पढ़ा, कितनी क्वालिफिकेशन है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, कभी नहीं बात करेंगे, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती. बल्कि उसके साथ तो मैं बैठ के ऐसे ही डिस्कस करूंगा कि सुनाइए नवाज शरीफ साहब आजकल क्या कर रहे हैं. अब जो जो इंसान बात कर रहा है मेरे साथ, मैं उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स डिस्कवर करता चला जा रहा हूं. उसके बाद फिर मैं उससे कह दूंगा थैंक यू वेरी मच, देन सी यू नेक्स्ट. बगैर नोटिस दिए उसको मैं क्लब में इनवाइट कर लूंगा खाने पर, वहां उसको लंच ऑफर करूंगा, और उस लंच पर मैं दुनिया भर की बातें, मुख्तलिफ किताबें, मुख्तलिफ, तो उसका अंदर जो है वो सारा खुलकर सामने आ जाएगा. नेक्स्ट टाइम उसको मैं घर पर डिनर पर इनवाइट कर लूंगा और वहां गुफ्तगू करनी शुरू करूंगा तो मेरे सामने वो पूरी तरह खुल जाएगा। क्योंकि क्वालिफिकेशंस कोई मायने नहीं रखती। इंसान ने सीखा क्या है? मुझे क्वालिफाइड आदमी नहीं चाहिए, मुझे लर्नर्ड आदमी चाहिए। तो हम अपने बच्चों को लर्नर्ड नहीं बनाते, हम उनको एजुकेटेड बनाते हैं। ये काम ना करें, हम अपने बच्चों को लाला के मुख्तलिफ मैगजीन्स और पेपर्स और रिसर्च पेपर्स ये सब प्रोवाइड करें कि ये लोग पढ़ो, और उनका ताल्लुक बेशक सब्जेक्ट से ना हो, उसी से उनके अंदर वीएन पैदा होती चली जाएगी और उनका मेंटल होराइजन बड़ा ब्रॉडन हो जाएगा। यही पर्सनैलिटी को आपके इम्प्रेसिव बनाएगा। ये एक सवाल है कि बाज़ोकात माजी की किए गए गुनाह और गलतियों से इंसान तौबा तो कर लेता है, लेकिन उन गुनाहों और गलतियों की याद जहन से नहीं जाती। क्या गुनाह की याद खत्म हो जाए? क्या इसका नाम तौबा है? एक दिन हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जनाब हजरत श्री सक्ती साहब के पास गए और श्री सक्ती साहब को उन्होंने देखा कि खासे मलूल हैं, रंजीदा हैं। ये बात मैंने उर्स के मौके पर अर्ज की थी तो हजरत जुनैद बगदादी ने श्री सक्ती साहब से पूछा कि क्या हुआ, खैरियत है, आपकी तबीयत में मलाल है? तो आपने फरमाया कि एक नौजवान आया था और मनाजरे की सूरत में मुझसे उसने बहस की तौबा पर, मुझसे पूछा कि तौबा क्या है। तो मैंने बता दिया कि गुज़श्ता गुनाहों पर शर्मिंदगी और आइंदा गुनाहों से दूर रहने के वादे का नाम तौबा है। तो उसने पूछा कि जो पीछे गुनाह हुए उनको भुला दिया जाए? तो मैंने कहा कि नहीं, उनको याद रखा जाए। तो उसने कहा कि आप गलत कहते हैं, ऐसा नहीं है, पिछले गुनाहों को याद रखा जाना चाहिए। तो सरी सक्ती साहब ने जनाब हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह साहब से पूछा कि आपके नजदीक क्या है? तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे ख्याल में वो नौजवान दुरुस्त कहता था। बात यह है कि जब हम गुनाह कर रहे हैं तो हम हालत जफा में हैं, हम अल्लाह ताला से जफा कर रहे हैं। तो जब हम तौबा करते हैं तो हम हालत जफा से हालत वफा में चले जाते हैं। तो अगर हमने अपनी हालत जफा भुला दी तो इम्कान यह है कि हालत वफा में याद नहीं रहेगा कि हालत जफा में क्या था, तो हम वफा से जफा में दोबारा चले जाएंगे। अगर हालत जफा से हालत वफा में आने के बाद हालत जफा भी याद रहे तो हमें वो चुभन महसूस होती रहेगी कि हमसे वो गलती हुई थी कि हमने रब से जफा कर डाली, तो वो हमें हालत वफा से हालत जफा की तरफ दोबारा नहीं जाने देगी। तो ये गुनाहों का याद रहना मुबारक है इस सेंस में कि ये हमें दोबारा गुनाहों की तरफ जाने से रोके रखेगा। ये किसी ने सवाल पूछा है कि ओल्ड एज में जरिया मुआश के लिए इन्वेस्टमेंट के कौन से जराए हो सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं और इस्लाम की नफाज और इसको एंश्योर करना कि हमारे तमाम चलन इस्लाम के मुताबिक हों, यह हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत कुछ ज़राए के बारे में ये फतवा जारी कर दे कि इसमें सूद का कोई अंसर नहीं है, यह हलाल है, तो हमें तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि हुकूमत के उस फतवे के बाद तमाम तर गुनाह या बोझ हुकूमत पर होगा, हम पर नहीं। तो वो ज़राए जिसके बारे में इस्लामी नजरियाती काउंसिल, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा अदारा है शरीयत पर अमल कराने के लिए, अगर इस्लामी नजरियाती काउंसिल इस चीज को डिक्लेयर कर दे कि ये जगह ऐसी है जहां अगर आप इन्वेस्ट करें तो इसमें सूद का एलिमेंट नहीं होगा, तो वो सेफ है। एक और सवाल है कि अगर मुरीद किसी मुश्किल में हो या किसी मसले का हल पूछना हो और मुर्शिद साहब उन दिनों दूर हों इन आयाम में, तो मुर्शिद साहब का तस्वर करके अपना मसला उनके सामने पेश किया जा सकता है ताकि परेशानी का हल निकल आए। तस्वर न कीजिए लेकिन उनकी तरफ तवज्जो बांधिए और उनसे बगैर तस्वर के अर्ज कीजिए ताकि बुत परस्ती में न आए। और अगर आपके मुर्शिद कामिल हैं तो यकीनी तौर पर या तो आपके अपने जहन में उसका हल फौरी तौर पर आ जाएगा या ख्वाब में आके आपको उसका हल बता देंगे, लेकिन तस्वर मत कीजिए, वो बुत परस्ती में चली जाएगी बात। खवातीन हजरात, मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, बशर्ते जिंदगी इंशाअल्लाह ताला अगली इतवार आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।